मार्केटिंग की जानिब से पेशे खिदमत है फंटास्टिक फैमिली फन फेस्टिवल एक बार फिर आ रहा है आपके शहर ब्रैम्पटन में और साथ ला रहा है तरह तरह के चटखारेदार खाने बच्चों के खेल झूले मुकाबले लाइव शोज ओपन एयर बाजार शायकी ने क्रिकेट के लिए अजीमुशान क्रिकेट टूर्नामेंट और बहुत कुछ जबरदस्त तफरी और दाखिला बिल्कुल मुफ्त ऑन अगस्त 26, 27 एंड 28 CAA सेंटर ब्रैम्पटन मजीद मालूमात और फ्री रजिस्ट्रेशन के लिए विजिट करें fantasticfest.com
द मोस्ट ग्लोरियस द मोस्ट एक्साइटिंग द मोस्ट स्टार स्टडेड इवनिंग इज रिटर्निंग फॉर इट्स 8th एडिशन हम अवार्ड्स वंस अगेन इन कनाडा ऑन 24th सितंबर 2022 फर्स्ट ओंटारियो सेंटर To book your tickets, log on to www.ticketmaster.ca. For Canadian sponsorships, please call 905-849-5551 or log on to hamawards.ca.
Ji.
हाँ जी वाशिंगटन पोस्ट की आज एक रिपोर्ट है और इसके मुताबिक ट्रंप साहब के जो ऑफिशियल्स थे उन्होंने जनाब और किसी को भी नहीं एफडीए को जोर डाला कि तुम फटाफट ये जो कोविड-19 वैक्सीन की स्टडीज हैं इनको जल्दी से तुम लोग अप्रूव करो क्योंकि फॉल 2020 में जो इलेक्शन होने वाला है उससे पहले ट्रंप साहब जो हैं इसको वैक्सीन को रोल आउट करना चाहते हैं और ये सारी जो है वाशिंगटन पोस्ट कहता है कि ये जो सारी हमने जो सिक्योर की हैं ईमेल्स टेक्स्ट मैसेजेस और इंटरव्यूज जो हैं वो जो कि कंडक्ट कर रही है कांग्रेशनल जो पैनल है जो इस सारी चीज को पेंडेमिक रिस्पॉन्स को जो अमरीका में था उसको प्रोब कर रही है वो इन्होंने हासिल किया है उसके बेस पर ये कह रहे हैं सीनियर ट्रंप ऑफिशियल्स जो हैं उनके मुताबिक जो हैं उन्होंने ऑथराइजेशन जो थी वो करने की कोशिश की थी एफडीए को कि आप जो है दें हाइड्रोक्लोरोक्विन के लिए फौरन हालांकि हाइड्रोक्लोरोक्विन आपको पता है कि मलेरिया और लूपस को ट्रीट करती है तो एफडीए ने यह क्लियरेंस देने से इनकार कर दिया था और उन्होंने कहा था कि कोविड के लिए यह बिल्कुल इनइफेक्टिव है तो हम इसको गो अहेड नहीं दे सकते हालांकि पाकिस्तान में लोग यूज कर रहे थे इसको तो वो कहते हैं जी और भी कुछ कंट्रीज में तो वो कहते हैं नहीं जी नहीं बिल्कुल नहीं अच्छा इसके अलावा वो वाशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट कहती है कि बहुत सारे व्हाइट हाउस के ऑफिशियल्स जो थे उन्होंने भी इनको जबरदस्ती की कि ये जो कॉन्वेलेसेंट जो प्लाज्मा ट्रीटमेंट है उसके लिए अच्छा तुम लोग जो है वो फिर दे दो जो है ना ऑथराइजेशन दे दो तो उस पर फिर एफडीए ने कहा कि हम ये अभी नहीं कर सकते हमारे पास ये पूरा डाटा नहीं है तो इसलिए इनके बारे में अब ये जो प्रोब बिठाई है उसने कमेटी ने कहा है कि इन्होंने रिपीटेडली और डिलिबरेटली एफडीए का जो साइंटिफिक वर्क था उसको बेंड करने की कोशिश की और अपनी जो पब्लिक और पॉलिटिक्स जो थी उसको पब्लिक हेल्थ के ऊपर प्रायोरिटी दी एंड विच इज एन असॉल्ट ऑन नेशंस पब्लिक हेल्थ एंड इट्स इंस्टीट्यूशंस
बट इलेक्शन के दूसरे दिन या तीसरे दिन जो है
अप्रूवल आ गया था हाँ जी हाँ जी
दैट इज नॉट फेयर टू
अब वो कहते हैं जी कि हमारा डेटा उस वक्त तक तैयार ही नहीं था
अच्छा
हाँ
इलेक्शन के दूसरे तीसरे दिन जो है
हूं ये तो सैंस है ना माजद भाई हूं सैंस नु तुसी किस तरह दसोगे नहीं भाई सैंस ने भी मेरी बात माननी है तो वो कहते हैं जी ये तो सैंस के चक्कर है तो वो जी है वो ऐसे ठीक है जी अच्छा जनाब ये कुछ दिन पहले वॉल स्ट्रीट जर्नल में एक खबर आई थी और इसके मुताबिक जो है यूएसए के अंदर वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक यूएसए के अंदर काफी कंसर्न से देखा जा रहा था ये जो अर्दोगान साहब बड़ा प्यार की पींगे बढ़ा रहे थे ना ये पुतिन साहब के साथ उसके ऊपर बहुत इनका कंसर्न आ रहा था अच्छा आज जो है ये और आगे है वो कह रहे हैं जी कि तुर्की के जो बिजनेस कम्युनिटी है उसके ऊपर अब यूएस का प्रेशर आ रहा है कि तुमने अगर अपने बिजनेस टाइज रशियन कंपनीज के साथ खत्म ना किए तो तुम्हारे ऊपर सैंक्शंस लगाए जा सकते हैं और इसलिए क्योंकि यूएस जो है वो बहुत ज्यादा अलार्म हो रहा है कि रशिया तुर्की के जो हैं सिस्टम्स उनको यूज करके उनको उनके बैंकिंग सिस्टम को यूज करके ये जो 6 महीने से वॉर चल रही है जिसकी वजह से हमने सैंक्शंस लगाए हुए हैं रशियन बिजनेसेस पे उनके ओलिगार्क्स पे तो उसके ऊपर ये इवेड कर जाएंगे वो सारे सैंक्शंस जो हैं अच्छा ये मुलाकातें जो अर्दोगान और पुतिन साहब के बीच में हुई थी ये सोची में हुई थी अर्लियर दिस मंथ और उसके अंदर क्योंकि टर्की की हमने आपको बताया ही था कि बहुत ही हालत खराब होती जा रही है इकोनॉमिक कंडीशन तो उसमें इन्होंने कहा था कि हम अपनी ट्रेड बढ़ाएंगे, और जब ट्रेड बढ़ा रहे थे ये तो 50% लास्ट ईयर से अब तक इनकी ट्रेड जो है वो बढ़ रही है, और टर्की ने एग्री किया है कि सारे ट्रांजैक्शन रूबल्स में करेगा और नेचुरल गैस भी इनसे लेगा, गैस प्रॉम से बहुत ही सस्ते दामों पे। इसके ऊपर यूएस डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ ट्रेजरी जो है वॉली एडियामो, उन्होंने कहा है जी कि उन्होंने वैसे तो विजिट भी किया था अंकरा और इस्तांबुल दोनों को अभी जून के अंदर ही, और उन्होंने बताया था कि हमारे ये कंसर्न्स हैं यूएसए के, और आप नेटो के मेंबर हो तुर्की वाले, और आपको ये टर्म्स इनके साथ नहीं बढ़ाने चाहिए। तुर्की कहता है जी हम बिल्कुल इसके अंदर जो है वो रहना चाहते हैं
न्यूट्रल
रहना चाहते हैं, क्योंकि हमारे अच्छे ताल्लुकात मॉस्को के साथ भी हैं और कीव के साथ भी हैं। ये जो एडियामो है इन्होंने अब एक लेटर लिखा है तुर्की की जो बिजनेस कम्युनिटी है और जिसका क्या नाम है टूसियाड, उसको और जो अमेरिकन चेंबर ऑफ कॉमर्स जो है तुर्की में उसको भी, और उन्होंने कहा है कि वो तमाम तुर्की के बैंक्स जो कि अब ट्रेड करेंगे रशिया के साथ उनके ऊपर भी हम सैंक्शंस लगाएंगे। तो जो ये टूसियाड वाले हैं वो कहते हैं जी हमने तुर्की की जो फॉरेन मिनिस्ट्री है और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड ट्रेड है उसको हमने आपका ये लेटर भेज दिया है, और अगर ये आपके साथ कोई बातचीत करेंगे तो ये लोग करेंगे और जो हमें इंस्ट्रक्शंस देंगे हम उसके ऊपर चलेंगे। इसके अलावा जो एडियामो साहब हैं उन्होंने जो है अभी फ्राइडे के दिन भी फोन किया था जो तुर्की के डेप्यूटी फॉरेन मिनिस्टर हैं यूनुस अलीताज, और उनको भी कहा था कि जी आप ये ना करें क्योंकि सिर्फ रशिया पे नहीं, फिर हम आपके ऊपर भी सैंक्शंस लगाएंगे, आपके इंडिविजुअल्स पे, आपके बैंकों पे, आपके बिजनेसेस के ऊपर, तो ये बहुत बुरे तरीके से आपको हिट करेगा। तो आप देखते हैं ये तैनकी तो बड़ी सख्त है, तो आप पता ही चलेगा कि क्या होता है इसके अंदर। अच्छा जी, आज जनाब बहुत ही बड़ा दिन था जर्मनी के लिए, क्योंकि गलत हो बड़े मुल्क थे फिर इसी तरह कम कर देना है जी। अभी आपने कहा था हाइड्रोजन तो इनके पास है कि नहीं है, है थोड़ी सी, तभी इन्होंने ये काम शुरू किए हैं। जर्मनी ने जी आज फॉर द फर्स्ट टाइम एंड दे हैव एक्चुअली मेड हिस्ट्री, इन्होंने जो अपनी रेलवे लाइन है इट्स एंटायरली नाउ पावर्ड बाय हाइड्रोजन, ये देखें जी उनकी ये इन्होंने चलानी शुरू कर दी है, एंड दे हैव रिप्लेस द डीजल के जो इनके रेलवे के डब्बे थे वो उनको रिप्लेस कर दिया है, और वो कहते हैं जी कि दिस इज पार्ट ऑफ आवर ग्रीन ट्रेन ट्रांसपोर्ट। 14 ट्रेनें इन्होंने चलाई हैं और इसका नाम है कोराडिया आइलैंड, ये जो नई इन्होंने चलाई है हाइड्रोजन पावर्ड बसे नहीं रेले और इसको जो है फ्रेंच इंडस्ट्रियल जॉइंट एल्स्टॉम ने बनाया है, और ये जो जर्मन स्टेट ऑफ लोअर सेक्सनी है उसके अंदर इन्होंने पहले चलानी शुरू की है। 100 किलोमीटर ट्रैक इन्होंने हटाया है जो कि अब कनेक्ट करेगा ब्रेम हेवन, ब्रेम रोवर्ड, कक्स हेवन, बक्स्टहेड और हैम्बर्ग के पास जो है ये सारे इलाके इनको कनेक्ट करेगा। वो कहते हैं जी कि ये जीरो एमिशंस इसमें से आएंगे, और ये काम कैसे करता है, वो लोग जो हमारा टीवी देख रहे हैं उनको एक पैनल सा लगा हुआ नजर आएगा इस ट्रेन के ऊपर, वो पैनल क्या कर रहा है वो जो आपको नजर आएगा वो रूफ के ऊपर लगा हुआ है, और ये हाइड्रोजन नीचे से आ रही है और ऊपर जो हवा के अंदर ऑक्सीजन है उसके साथ मिलके ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहा है जो कि इसको ट्रेन को पुल कर रहा है। ये टेक्नोलॉजी जी इन्होंने इंट्रोड्यूस की है जी। तो वो कह रहे हैं कि इस तरह से जर्मनी के अंदर 4,400 टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो कि हर साल हम रिलीज करते थे, एक तो वो रिड्यूस होगी, और जो है उसके अलावा जो है हमारे जो है क्लाइमेट के जो गोल्स हैं वो भी हम पूरे कर सकेंगे। इस पूरे प्रोजेक्ट के ऊपर अभी तक जो है उसके ऊपर 93 मिलियन US डॉलर्स लग चुके हैं, तो वो कहते हैं जी आने वाले दिनों में इसको और भी आगे बढ़ाया जाएगा, और ये जो काम था सारा ये शुरू हुआ था 2018 में, विच मीन्स दे हैव हाइड्रोजन
एट दैट टाइम।
ठीक है जी, तो ये बात है, मैंने क्या कहा था जर्मन्स बड़े अजीम लोग हैं। अच्छा जी, बांग्लादेश के अंदर जो है वो एनर्जी का क्राइसिस बहुत ज्यादा डीप होता जा रहा है, उसकी वजह से आज बांग्लादेश की गवर्नमेंट ने कहा है कि स्कूलों को एक और दिन बंद किया जाएगा। इससे पहले स्कूल सिर्फ एक दिन बंद होते थे बांग्लादेश में फ्राइडे के दिन, लेकिन अब फ्राइडे और सैटरडे को बंद होंगे, और गवर्नमेंट के जो ऑफिस और बैंक हैं वो 8 घंटे के बजाय 7 घंटे काम करेंगे। इसकी वजह से पिछले दिनों में बांग्लादेश की सड़कों के ऊपर काफी प्रोटेस्ट किए गए क्योंकि लोगों को बिजली नहीं नहीं मिल रही थी, कंप्लीट डिसरप्शन थी, साथ साथ 8-8 घंटे बिजली, कुछ इलाकों में तो जो ढाका से बाहर है वहां पे तो 10 से 12 घंटे की भी लोड शेडिंग हो रही थी। उसकी वजह यह है, गवर्नमेंट कहती है कि 50% फ्यूल प्राइसेस जो है उनके अंदर इंक्रीज हो गया है, और हम रशिया से बात तो कर रहे हैं चीपर फ्यूल के लिए, लेकिन हमें डर है कि हमारे ऊपर सैंक्शन ना लगा दी जाए, तो अंडर स्पेशल अरेंजमेंट्स जो है हम उनसे चीप फ्यूल जो है वो लेना चाहते हैं। और इसके अलावा उन्होंने कहा जी कि जो इंडस्ट्रियल जोन है हमारी, उसको हम बिल्कुल जो है वो इलेक्ट्रिसिटी बंद नहीं करेंगे, क्योंकि वो कहते हैं जी कि हमारी इंडस्ट्रियल सेक्टर ने 416 बिलियन US डॉलर जो है वो इकोनॉमी के अंदर पंप किया है इन द लास्ट डेकेड, तो इसलिए इसको चलता रहेगा। लेकिन एट द सेम टाइम बांग्लादेश नाउ हैज बिकम द थर्ड कंट्री इन साउथ एशिया जिसने कि अब IMF के पास जो गए हैं कि उनको बेल आउट पैकेज एक दिया जाए आफ्टर श्रीलंका एंड पाकिस्तान। तो ये हैं जी गल्लें चल रही हैं, हैं जी ये चल रहा है
गल्लें गल्लां,
आहो जी आहो गल्लां ये चल रही हैं, बड़ी खतरे में नाक। अच्छा जी, अदानी ग्रुप आजकल कुछ ज्यादा ही न्यूजों में है, तो आज अदानी ग्रुप ने जनाब क्या खरीदा है बताएं आप
क्या?
आज इंडिया का जो सबसे बड़ा और अभी तक जो बिल्कुल थोड़ा सा अनबायस्ड न्यूज अदारा था NDTV
जी।
उसके अंदर जनाब इन्होंने 29.18% स्टेक खरीदा है। इनका जो मीडिया आर्म है विश्वा प्रधान कमर्शियल प्राइवेट लिमिटेड, उन्होंने इसको खरीदा है जी, और इसकी जो प्राइस है 114 करोड़ जो है वो उन्होंने लगाई है। और इनके जो अदानी मीडिया नेटवर्क के जो CEO हैं संजय बुगालिया, उन्होंने कहा कि ये बड़ा जो है सिग्निफिकेंट हमारा माइलस्टोन है, और हम जो है अब इस प्लेटफॉर्म के थ्रू यानी अपनी अब तारीफें करेंगे।
ठीक है
जी, तो बहरहाल जी NDTV जो था वो भी बड़ी मुश्किल में था, क्योंकि उसके भी सच बोलने की वजह से काफी एडवर्टाइजिंग स्ट्रीम्स जो थे वो काट दिए थे, तो उनको भी शायद बूस्ट मिलेगा। और अदानी जी के तो मजे ही मजे हैं, जाहिर है उनको तो बहुत ही बड़ा बूस्ट मिलेगा। द वायर की एक स्टोरी है जी, एंड दिस इज रिटन बाय प्रेम शंकर झा, और इसकी हेडिंग है इस स्टोरी की, In turning India into tyranny, Modi has made economic crimes his latest weapons. ठीक है जी। अच्छा जी, अब इसमें वायर की स्टोरी में प्रेम शंकर झा साहब ने लिखा क्या है, उन्होंने कहा जी 8 साल जो मोदी जी की गवर्नमेंट में हुए हैं तो उसमें अब हमें प्रिटेंड करने की जरूरत नहीं है, ये तो अब सारी दुनिया को पता ही चल गया है कि कैसे इंडिया का जो मल्टी एथनिक मल्टी रिलीजियस डेमोक्रेसी थी उसको खतरे में डाल दिया है मोदी जी की गवर्नमेंट ने। वो कहते हैं जी कि एक पिलर जो कि अभी तक खड़ा हुआ था जब पहले 4 साल थे मोदी जी के, वो थी जुडिशरी, और अब जुडिशरी ने भी जो माशाल्लाह जो बंदे लगाए और जो जुडिशरी भी जो फैसले किए हैं उसने हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी का जो ये पिलर था उसको बुरे तरीके से किया है, डैमेज किया है। वो कहते हैं जी जब से मोदी जी की गवर्नमेंट 2019 में यानी कि लौट के फिर से जब आई है दूसरी बार जब जीती है, तो उसमें उन्होंने जस्टिस लगाए हैं, जस्टिस AM खान विल्कर टाइप के लोग, जिनकी के जजमेंट्स आने वाले हिंदुस्तान की नस्लें याद रखेंगी कि कितनी उसके अंदर हॉस्टिलिटी थी टुवर्ड्स सिविलियन सोसाइटी, डिसरिगार्ड फॉर फंडामेंटल राइट्स, प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस जो होती है कि जी इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, उसका कैसे सत्यानाश इन्होंने किया है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन का एक बड़ा मेन हिस्सा था, उसको ये जो है तारीख हमारी याद रखेगी। वो कहते हैं जी कि इन्होंने स्टार्टिंग फ्रॉम June 25 जो है फंडामेंटल राइट्स जो हैं और डेमोक्रेटिक राइट्स जो हैं लोगों के वो खराब करने शुरू किए जब उन्होंने जकिया जाफरी की प्ली जो थी वो डिसमिस की। और अगर आपको पता हो जकिया जाफरी का कि गुजरात के अंदर जो इनके कांग्रेस के MLA थे इनके जो हस्बैंड थे उनको मारा गया था, तो इनकी वाइफ जकिया ने कहा था कि भाई उसको जस्टिस दो, तो उसको जो है ये कंटेम्प्ट कह के इसको खारिज कर दिया गया था जिससे उनको बड़ा दुख हुआ था। उसके बाद जी वो कहते हैं जी कि इन्होंने जो है July 27 को सिर्फ अपने 2 days बिफोर रिटायरमेंट 242 पिटीशंस जो थी उनको रद्द कर दिया सिर्फ इसके लिए कि जी इसके अंदर जो थे इल बिगॉटन गेन्स थे और ये मनी लॉन्ड्रिंग थी और ये ठीक नहीं थी और लेफ्ट राइट एंड सेंटर इम्प्रिजनमेंट्स दिए गए और ये किया गया। और ये जो इनकी एजेंसीज हैं उन्होंने इन सारे लोगों के ऊपर सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशंस जो थी बिठाई और इनके ऊपर लगाई, और इसके लिए जो है ईडी को भी यूज किया गया और डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस को भी यूज किया गया। वो कहते हैं जी इसमें से 80 लोगों के ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग के केस बगैर किसी प्रूफ के लगाए गए और गवर्नमेंट के पास कोई इसमें अथॉरिटी नहीं थी कि ये इसके अंदर जो है इंटरफेयर करती। अलेजली बिटवीन 2002 टू 2014 वो कहता है जी ईडी जो है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी उसने 112 केसेस जो थे वो किए थे। और अब आप वो कहते हैं जी अब आप देखें अब हाल क्या है, बिटवीन जून 2014 टू मार्च 2022 ईडी ने 5,310 केसेस रजिस्टर किए और अगेंस्ट कितने 112 जो कि किए थे 10-12 साल में। इस एरिया अरसे में इन्होंने 5000 से ऊपर केसेस और 3086 में सर्चेस की। और वो कहते हैं कि ईडी के पास डायरेक्ट ऑर्डर कभी भी नहीं होता, ये ना तो लोगों को बुला सकते हैं ना सर्च कर सकते हैं जब तक कि इनको ऊपर से ऑर्डर ना होए। तो ये किस तरह के ऑर्डर्स इनको दिए जाते हैं ईडी वालों को कि ये बस चले जाते हैं और काम करते हैं। वो कहते हैं जी 1933 में हिटलर साहब जो थे उन्होंने भी वो जो रीस्टैग यानी कि जो जर्मनी का पार्लियामेंट था उससे फायदा उठाने के लिए कहा था उनको जर्मन प्रेसिडेंट को वॉन हिंडनबर्ग और कहा था कि मैं फॉर लाइफ चांसलर रहना चाहता हूं। वो कहते हैं जी कि मोदी जी ने इस चीज को और बेहतर कर दिया है। अब उन्होंने क्या किया जी कि वो उन्होंने ऐसे टैक्टिक्स यूज किए हैं कि ऑपोजिशन की कमर तोड़ी जाए और उनको टेम किया जाए, उनको हरेस किया जाए, उनको इंतहाई तंग किया जाए, जो माइनॉरिटीज है उनको दीवार के साथ लगाया जाए, लोगों के ऊपर अपनी जो एजेंसीज हैं उनके थ्रू जो है केसेस बनाए जाए, सेडिशन के केसेस, ट्रीजन के केसेस, और उनको जेलों में डाला जाए, उनको डराया धमकाया जाए, उनकी जबान बंद की जाए। और इस तरह से वो कहते हैं जी कि ये रूल जो है ये किया जा रहा है। तो ये हिंदुस्तान जो है किस तरफ जा रहा है आप खुद सोचें।
सही।
तो ये आज इनका प्रेम शंकर झा साहब का बड़ा ही हार्ड हिटिंग आर्टिकल था जो द वायर में था। एंड जनाब हमारे जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब हैं वो कतर पहुंचे हुए थे भीख मांगने के लिए, तो कतर इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी ने कहा है हां जी पायान बिल्कुल बिल्कुल वी अंडरस्टैंड योर पेन, हम जो है आपके मुल्क में $3 बिलियन की जो है यूएस डॉलर की हम इन्वेस्टमेंट करेंगे। शहबाज शरीफ साहब ने अपनी इस मुलाकात में कतारी अमीर जो है शेख तमीम बिन हमद अल थानी उनके साथ मुलाकातें की और उनको कहा जी असी तुहाड़े भरावां साढ़े साथ तुहाड़ा बड़ा प्यार है इस वास्ते साढ़े मुल्क दे विच इन्वेस्ट करो। तो कतारी अमीर ने कहा जी बिल्कुल बिल्कुल तुसी साढ़े भरा हो साढ़ा बड़ा प्यार है। इसके अलावा जो ब्लूमबर्ग था उन्होंने कहा जी कि बेसिकली ये जो कतारी अमीर ने कहा है कि जो इन्वेस्टमेंट्स करेंगे ये जो मेजर एयरपोर्ट्स हैं पाकिस्तान के इस्लामाबाद और कराची और रिन्यूएबल एनर्जी के जो प्रोजेक्ट्स हैं पावर है हॉस्पिटैलिटी सेक्टर है उसमें ये जो है इन्वेस्टमेंट्स करेंगे। इसके बाद जी साड़ा जड़ा प्राइम मिनिस्टर है साड़ा भरा वो पहुंच गया इनका जी इंफ्रास्ट्रक्चर देखने के लिए कतर का कि मैं बड़ा इंप्रेस्ड हूं आपके इंफ्रास्ट्रक्चर से। तो फीफा वर्ल्ड कप स्टेडियम 974 जो है दोहा में उसको देखने के लिए ये निकल गए। वो जरा तस्वीर दिखा दें रहे वो उसकी जो है वो स्टेडियम की वहां पे ये चले गए और वहां पे फिर इनको जितने भी लीडर्स थे उन्होंने ब्रीफ किया इनको कि हां जी हमने ये फैसिलिटीज की हैं ये हमारी प्रिपेयर्डनेस है और ये कर रहे हैं। रहे वो तस्वीर दिखा दें जो है वर्ल्ड कप स्टेडियम 974 की तो उसके अंदर इन्होंने कहा जी कि बड़ी जबरदस्त आपकी फैसिलिटीज हैं और बड़ा जबरदस्त मैं आपसे इंप्रेस्ड हूं तो आप जो है इसके अंदर जो आपने ये किया है ये बड़ा जबरदस्त है तो हमें बताया। अच्छा हमें अंदर की खबर आई है कि इन्होंने कहा है कतर को कि जी हमारी पाकिस्तान मिलिट्री आके वर्ल्ड कप के बीच में आपको यहां पे सिक्योरिटी देगी।
अच्छा
हां जी
ठीक हो गया जी
पायने की चल रहे हैं। अच्छा जी चलो ठीक है ओके ये जी ये फाइनली आ गई ये तस्वीर। हां जी ये देखें जी तो ये स्टेडियम में खड़े थे तो उन्होंने बड़ी जी तारीफ की इनकी। ठीक है जी इन्होंने कहा जी कतारियों ने बड़ा कमाल किया था पाए तुम भी अपने मुल्क में कमाल कर लो तुहानू किसी ने रोकिया तो नहीं है ना। अच्छा जी चलो जी ठीक है। अच्छा जनाब इस्लामाबाद की एक हाईकोर्ट जो है उसको आज फिर इस्लामाबाद जो पुलिस थी उसने कहा था कि जी शहबाज गिल के लिए हमको 7 डेज और के लिए फिजिकल रिमांड आप दें तो आज कोर्ट ने रिजेक्ट इसको किया। उन्होंने कहा कि नहीं और हम नहीं दे सकते हैं क्योंकि ऑलरेडी 2 दिन जो आपको फिजिकल रिमांड दिया था शहबाज गिल साहब का वो हम अब आपको और इसको एक्सटेंड नहीं कर सकते। इसका जो जिक्र है जुडिशियल मैजिस्ट्रेट मलिक अमन साहब ने किया और यहां पर इनके जो काउंसिल थे शहबाज गिल साहब के फैसल चौधरी और अली बुखारी जो थे वो आए हुए थे और उन्होंने कहा कि ये जो इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी पुलिस ने प्लीड किया है इसकी कोई भी वैल्यू नहीं है क्योंकि सेडिशन केस इनके ऊपर जो अगस्त 19 की वो जो रैली हुई थी उसके वजह से नहीं, अगस्त 19 में 9 को जो इन्होंने बात की थी उसके ऊपर सेडिशन केस इन पे लगाया गया था, जिसके बारे में कहा था कि पाकिस्तान मिलिट्री के बीच में उन्होंने म्यूटनी क्रिएट करने की कोशिश की है, तो उन्होंने कहा जी कि इसकी कोई जो है वो नहीं है, मतलब है वो नहीं है, मकसद इसका कुछ नहीं है, और बैक टू बैक जो है ये इनको ये पुलिस रिमांड में भेजा जा रहा है, तो उसकी वजह से उनकी सेहत खराब है, क्योंकि वैसे भी ये बार बार पुलिस कस्टडी में जा रहे हैं, फिर पिम्स हॉस्पिटल जा रहे हैं, फिर पुलिस कस्टडी में, फिर पिम्स, तो आज फिर इसको देखते हुए, उनकी सेहत को देखते हुए इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है स्पेशल कोर्ट उसने रिजेक्ट किया पुलिस की ये रिक्वेस्ट। इसके अलावा जी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो उसने सिंध के अंदर जो अब होने वाले थे लोकल बॉडीज के इलेक्शन सेकंड फेज के, उसको अब पोस्टपोन किया है, क्योंकि वहां पे हालत जो है बहुत ज्यादा खराब है। ये मीटिंग जो है ये चेयर कर रहे थे इलेक्शन कमिश्नर जो है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर राजा साहब, और उन्होंने कहा जी कि चूंकि रेन और फ्लडिंग आ गई है, तो ये जो इलेक्शंस होने थे अगस्त 28 को 16 डिस्ट्रिक्ट्स में, ईस्ट वेस्ट साउथ सेंट्रल कोरंगी किमाड़ी मलीर हैदराबाद दादू जमशोरो मठियारी टंडू मोहम्मद खान टंडू अलायार बदीन सजावल ठट्टा वगैरह में, तो ये कैंसिल किए जा रहे हैं। उसकी वजह यह है कि इसको इनको बताया गया इलेक्शन कमिश्नर साहब को कि पुलिस और जो बाकी की सिक्योरिटी एजेंसीज हैं दे आर एंगेज्ड इन रिलीफ वर्क। 50,000 पुलिस पर्सनल जो थे उनको लगाया गया था इलेक्शंस के लिए, लेकिन 33,000 जो थे वो कराची में थे, और बाहर से 16,000 जो थे उनको बुलाया गया था फॉर पीसफुल इलेक्शंस, लेकिन अब जो पुलिस और रेंजर्स और आर्मी सब रिलीफ का वर्क कर रहे हैं फॉर फ्लड विक्टम्स, तो इसलिए अब ये इलेक्शंस नहीं हो सके, तो इसलिए इनको पोस्टपोन किया गया। इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस कोर्ट जो है उसने जी 6 पीटीआई के जो लीडर्स हैं उनको इंटरिम बेल दी है, और इनके ऊपर जो था वायलेशन ऑफ सेक्शन 144 था, जिसमें कि कहा गया था कि आपको बैन लगाया जाता है कि आप पब्लिक गैदरिंग इस्लामाबाद में नहीं कर सकते, 4 लोगों से ज्यादा इकट्ठे नहीं हो सकते, जो इस्लामाबाद में आपने रैली की थी अगस्त 2 में। तो ये जो 6 पीटीआई के ऑफिशियल थे, सैफुल्लाह नियाजी अली अवान राजा खुर्रम फैसल जावेद सदाकत अब्बासी शहजाद वसीम, तो इनके जो लॉयर्स हैं इन्होंने आज आके एडिशनल सेशंस कोर्ट जज जो है फैजान हैदर गिलानी जो था उनको कहा जी कि ना तो इसमें कोई इनके जो खिलाफ जो एफआईआर लिखाई गई है वो नॉन बेलेबल है, यानी कि वो बेलेबल है उसमें दे सकते हैं, और ना ही ये जो केसेस इन पे लगाए गए हैं उनके अंदर कोई सबूत है, यानी बेसलेस हैं ये केसेस। तो इन्होंने जो हैदर गिलानी साहब हैं जज हैदर गिलानी साहब उन्होंने फिर कहा कि ये श्योरिटी बॉन्ड एक भरेंगे 20,000 का, और इनको कहा है जी कि आपने नेक्स्ट अदालत के अंदर आना है सितंबर 8 में, लेकिन अभी इनको जो है इंटरिम बेल दिए गए हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है जी उन्होंने माजिद भाई की बहुत ही फेवरेट पीटीआई लीडर जो है फिरदौस आशिक अवान और जो उस्मान डार साहब हैं उनको कहा जी कि आप कमीशन के सामने जो हैं वो हाजिर हुए, क्योंकि डस्का बाय इलेक्शंस के अंदर हमें पता चला है कि बहुत सारी आपने वायलेंस की, और ये जो है आप अब जो इलेक्शन कमीशन का सेक्रेटेरिएट है इस्लामाबाद में 30 अगस्त को वहां पे आप आएंगे। ये जो नोटिस इनको भेजा गया है उसके ऊपर अगस्त 22 की डेट है। इलेक्शन कमिश्नर जो ईसीपी के जो डिप्टी डायरेक्टर हैं नईमुर रहमान साहब उन्होंने इनको भेजा था, और उन्होंने कहा जी कि पीटीआई की जो सेंट्रल पंजाब प्रेसिडेंट हैं उमर डार और ये जो दूसरे लोग हैं आरिफ सोनी आसिफ सोनी और इकबाल सोनी वगैरह इन लोगों ने यहां पे धांधली करने की कोशिश की थी, इन्होंने पुलिस के मेंबर्स को और दूसरे ऑफिशियल्स को अपने पास बुलाया और इनको जो है 3-3 लाख रुपए दिए और पुलिस को भी करप्ट किया बाकी अदारों को भी करप्ट किया, और कहा जी कि ये जो इलेक्शंस यहां पे होंगे उसके अंदर आपने हमारे हक में फैसला देना है। ये उन्होंने मीटिंग फरवरी 17, 2021 में की थी, और इसमें हमें प्रूफ्स मिले हैं कि जी 6 लोग थे यहां पे, इसलिए आपको जो है आपके ऊपर एलिगेशंस हैं कि आपने करप्ट किया है सारा सिस्टम, तो आप आके ये सारी इररेगुलरिटीज के ऊपर जवाब दें। मतलब ये तो केस बड़े फटाफट आते पे ने जी, तो जड़े जरदारी साहब तो मियाँ साहब उत्ते ने वो कदों बई सामने आएंगे फिर हैं, तो ये बात है। अच्छा जी, जो हिंदुस्तान की एक्ट्रेस हैं जैकलिन फर्नांडिस वो तो अब और ज्यादा फंसती चली जा रही हैं, क्योंकि जो ईडी है इंडिया का वो अब कह रहा है कि 200 करोड़ के जो एक्सटॉर्शन केस है ये जो कॉन मैन है सुकेश चंद्रशेखर उसके साथ तुम इन्वॉल्व थी, और ये जो तुम्हें सारे गिफ्ट्स मिले थे जो इसने दिए थे सुकेश ने ये बड़े बड़े लोगों को एक्सट्रॉट करता था इनसे मनी, उनको चीट करता था और फिर ये तुम्हें एक्सपेंसिव गिफ्ट्स जो थे वो देते थे, तो ये जो सारे इसके जो प्रोसीड्स थे ये क्रिमिनल एक्टिविटीज से आते हैं, तो उसके लिए आप जवाब दें और आपकी ये जो इन्वेस्टमेंट्स हैं ये कैसे हैं। उसका जवाब देते हुए जैकलिन फर्नांडिस ने कहा है कि ये जो भी कोई मैंने इन्वेस्टमेंट्स की हुई हैं ये सारी मेरी खुद की इनकम से हैं, ये मुझे सुकेश ने नहीं दी। हालांकि येस आई अग्री कि उसने मुझे 3 गुची के बैग्स दिए थे, 3 शनेल के बैग्स दिए थे, 2 गुची के जिम के आउटफिट्स दिए थे, लुई विटों के शूज दिए थे, 2 डायमंड ईयरिंग्स दिए थे, ब्रेसलेट दिया था मल्टी कलर्ड स्टोन्स का और 2 हर्मीज ब्रेसलेट्स दिए थे और एक मिनी कूपर भी दी थी जो मैंने वापस कर दी थी। तो इसलिए मेरा इसके साथ कोई तालुक नहीं है, लेकिन ये फनस गई है बेचारी। ठीक है जी। और जनाब T20 लीग जो दुनिया के अंदर मशरूम होती जा रही हैं उसके ऊपर ICC के ऊपर बड़े एलिगेशन लगाए गए हैं कि ये तो जो है गेम ऑफ क्रिकेट को बर्बाद कर देगी। लेकिन जो BCC जो PCB के जो हमारे ऑफिशियल हैं जो कि ICC के जनरल मैनेजर भी हैं वसीम खान साहब, उनका बिल्कुल ही डिफरेंट इसके ऊपर जो है वो कहना है। वो कहते हैं जी कि ये जो फ्यूचर्स टूर्स प्रोग्राम है इसके अंडर चैलेंजेस तो होंगे, लेकिन चैलेंजेस ऐसे नहीं होने चाहिए कि जिसमें कि उस मुल्क की टीम जो है वो बाकी बाहर की टीमों के साथ खेलने या उनके मैचेस खेलने के लिए अपनी डोमेस्टिक टीम जो है उसको स्टेक पे रखे। उन्होंने कहा जी कि T20, इनसे पूछा गया कि T20 जो मैचेस हैं जो या टेस्ट मैचेस जो हैं या बाकी के जो हैं उसमें पाकिस्तान बहुत ही कम पार्टिसिपेशन कर रहा है, जैसे कि सिर्फ पाकिस्तान 27 टेस्ट मैचेस खेल रहा है जो कि बांग्लादेश और न्यूजीलैंड से भी कम है। उसका जवाब देते हुए इन्होंने वसीम खान साहब ने कहा कि यस 40-50 टेस्ट मैचेस बहुत अच्छे होते हैं और लोग भी बड़ा खुश होते हैं, फैंस बड़े खुश होते हैं, लेकिन पाकिस्तान के लिए ये फीजिबल नहीं है, इसलिए कि पाकिस्तान जो है उसके सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल मैचेस इंडिया के साथ होते हैं और चूंकि इंडिया के साथ नहीं हो रहे हैं तो इसलिए हम जो है ये लूज करते हैं मनी जब हम कोई टेस्ट क्रिकेट किसी और के साथ खेलते हैं, तो हमको बैलेंस रखना पड़ेगा बिटवीन डिफरेंट फॉर्मेट्स और ये अच्छा नहीं है कि फाइनेंशियल लॉसेस जो है हम इनकर करें अनलेस एंड अनटिल हमारी इंडिया के साथ क्रिकेट नहीं शुरू होती और पैसे हमारे किटी में नहीं आते। तो ये है, तो इसलिए वो कह रहे हैं कि इस वक्त जो ये जो FTP यानी कि फ्यूचर्स टूर्स प्रोग्राम है मुझे बिल्कुल ठीक और बैलेंस लग रहा है, तो इसके अंदर जो भी ICC को क्रिटिसिज्म है वो सही नहीं है। एंड जनाब लास्ट न्यूज एब्सोल्युटली न्यूयॉर्क टाइम्स ने इसको जो है कोट किया है और इसके मुताबिक ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन जो है उसको सस्पेंड किया गया है फीफा की तरफ से। फीफा ने कहा है कि आपको आपका जो ये राइट थे जो आप होस्ट कर रहे थे 2022 का अंडर 17 विमेंस वर्ल्ड कप अक्टूबर में, उससे भी आपको स्ट्रिप किया जाता है, इसलिए कि फीफा की जो आज एक स्टेटमेंट आई है अकॉर्डिंग टू न्यूयॉर्क टाइम्स उसमें उन्होंने कहा है ब्यूरो ऑफ फीफा काउंसिल जो है उसने यूनानिमसली डिसाइड किया है कि AIFF यानी कि ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन को विद इमीडिएट इफेक्ट जो है सस्पेंड किया जाता है, क्योंकि इसके अंदर थर्ड पार्टीज की अनड्यू इंटरफेरेंस है जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन जो फीफा का कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अगेंस्ट है और ये वायलेशन है हमारे स्टैट्यूट्स जो हैं उनका, तो इसलिए हम आपको इजाजत नहीं दे सकते। लेकिन जो ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन है उसने फीफा को रिक्वेस्ट की है कि प्लीज आप थोड़ा गौर करो और हमारे पे रहम करो, तो अब फीफा की मर्जी है कि वो अब क्या करेगा आने वाले दिनों में। तो ये थी हमारी खबरें,
ये थी खबरें और बाकी की खबर कल फिर इंशाल्लाह हम आ जाएंगे आपके पास। परवाह क्यों कर रहे हैं आप, फिर जितनी खबरें होंगी अब से लेके कल तक की वो हम कल 5:30 बजे आपके खिदमत में हाजिर होंगे। अभी आपने जाना नहीं है कहीं? हाँ आप जा सकती हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू।
आप यहाँ पे पॉपी म्यूजिक शुरू कर लेंगे
एकदम, हाउ डू यू नो,
ओ माय गॉड, ऐसा पॉपी म्यूजिक मैं नहीं सुन सकती, मैं जा रही हूँ
पाकिस्तानी पॉपी म्यूजिक मैंने पॉपी कह दिया उसको पाकिस्तान का पॉप म्यूजिक हिस्ट्री इंपैक्ट एंड रिकॉर्ड सलीम जावेद आज हमारे स्पेशल होंगे, आज के
स्पेशल होते हैं भाई स्पेशल,
भांगड़ा पॉप किंग ऑफ पाकिस्तान, 14 एल्बम है, 14 हिट सॉन्ग्स हैं इनके, वो आपको हम सुनवाएंगे और उसके पीछे जो बैकग्राउंड में जो क्या क्यों हुआ कैसे हुआ क्या पहना था कहाँ हुआ था ये सारी इनसाइड स्टोरीज जो हैं वो जीशान आपके लिए लेके आएंगे। तो स्टे ट्यून फॉर दैट, कुछ स्पॉन्सर्स के पैगाम प्रोग्राम में वापस आएंगे। 4166201778 हमारा फोन नंबर है।
थैंक यू मजीद भाई,
थैंक यू जी।
Family is everything, and no matter where they are in the world, connecting with them just got a little easier. Now when you send a CIBC Global Money Transfer, loved ones abroad can pick it up in cash the same day at their local MoneyGram location. And with no transfer fee, you'll have more to share. It's the perfect way to help them achieve their goals. With a CIBC Global Money Transfer, family is never far away. Conditions and CIBC foreign exchange rates apply. Visit cibc.com/cashpickup.
अगर आपके घर में बेड बग्स हैं या किचन में कॉकरोचेस हैं या बेसमेंट में चूहे दौड़ते फिर रहे हैं तो उसके लिए एक ही नाम याद रखिए, बायोकैम पेस्ट कंट्रोल। हम आपको बेहतरीन क्वालिटी की सर्विस बेहतरीन रेट्स पर फ्राहम करेंगे। उसके लिए डायल कीजिए 416-747-6600 या मुझसे यानी आलिजा से डायरेक्ट रब्ता कीजिए 647-848-4020
इन्ना सोना कर लिया हुन अप्लायंसेस भी स्टेनलेस स्टील दे ही चाहिए।
हाँ जी, स्टेनलेस स्टील दे अप्लायंसेस मिलेंगे तानू ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस ते, जिसे फ्रिज, स्टोव, डिशवॉशर, थ्री पीस किचन बंडल, इसके अलावा फ्रंट लोड वॉशर एंड ड्रायर, एनर्जी सेवर, एनर्जी स्टार, ते टीवी सेक्शन एच सोनी, सैमसंग, पैनासोनिक, शार्प, हर साइज से हर ब्रांड दा टीवी विद द लोएस्ट प्राइसेस इन द टाउन, सिर्फ ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस ते। ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस 801 Bowie Drive West Brampton ya call karo 905-450-2828-905-450-2828.
Save big bucks. Postream Auto Glass, windshield repair and replacement. Small chip ho ya scratch, professional staff karenge aapki windshield repair minton mein, wo bhi insurance claim ke saath. Special chip repair promotion of $60 only. Serving in Mississauga, Milton, Oakville, Burlington or Hamilton mein. For service call today 905-818-8472.
कहीं मॉर्गेज नहीं मिल रही, झटपट मॉर्गेज दिला के सारी मुश्किल कर देंगी आसान। 11 साल से ज्यादा तजर्बा और एक भरोसामंद नाम। हर किस्म की रेजिडेंशियल या कमर्शियल मॉर्गेज के लिए मॉर्गेज अलायंस की जैस्मिन परमार से राब्ता करें। रीफाइनेंसिंग ऑप्शंस, रिन्यूअल ऑप्शंस, मॉर्गेज डिफिकल्टीज, डाउन पेमेंट इश्यूज, सेल्फ एम्प्लॉयड, प्राइवेट फंड्स, सेकंड मॉर्गेज के लिए कॉन्टेक्ट करें मोस्ट ट्रस्टवर्दी जैस्मिन परमार से। नंबर टू कॉल 6479235659, 6479235659। लाइसेंस नंबर 10530।
कर्जे से निजात के लिए एक ही नाम, मोहम्मद सिद्दीक, ऑल द सॉल्यूशन, पुरसकून जिंदगी और क्रेडिटर्स की कॉल से छुटकारा।
मोहम्मद सिद्दीक, ऑल डेट सॉल्यूशन, बैंकरप्सी, इंसॉल्वेंसी, कंसोलिडेशन करते हैं अप टू 80%। मोहम्मद सिद्दीक आपके लिए काम करते हैं। पुरसकून जिंदगी, अच्छी सेहत और लंबी उम्र की जामिन। अपनी जिंदगी को पुरसकून करने के लिए, कर्जों से पाक करने के लिए राबिता कीजिए मोहम्मद सिद्दीक 416-671-0577।
क्या आप एक कार एक्सीडेंट में इन्वॉल्व हैं और आपको बेहतरीन लॉयर की तलाश है? हेमोफार प्रेजेंस की आपके लिए एक जाना पहचाना लॉयर है और मैं आपकी अपनी अंजुम कुरैशी आपके मसलों को उन तक पहुंचाती हूं। हमारी कंसल्टेंसी बिल्कुल फ्री है। कार एक्सीडेंट में आपका मशवरा लेना आपका कानूनी हक है। आप हमें कॉल कर सकते हैं 416-570-0157। जी हाँ, 416-570-0157।
अब मॉर्गेज लेना और भी आसान। सेंटम फ्यूचर मॉर्गेज ग्रुप के काकब जावेद को कॉल करें। प्राइवेट मॉर्गेज फॉर एनी पर्पसेस, कमर्शियल मॉर्गेज, इंडस्ट्रियल मॉर्गेज, फार्म एंड हॉबी फार्म, वेरी कंपैरेबल रेट्स फॉर फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड मॉर्गेज, न्यूकमर्स टू कनाडा, फर्स्ट टाइम बायर्स, सेल्फ एम्प्लॉयड, रीफाइनेंसिंग, डेट कंसोलिडेशन, असेस इन रियल एस्टेट, ही विल मेक मॉर्गेज इजी फॉर यू। काकब जावेद मॉर्गेज एजेंट 416-454-6065।
दांतों के इलाज के लिए डॉक्टर ने बिल बहुत ज्यादा बता दिया। सोचती हूँ बैक होम जाके दांतों का मुकम्मल इलाज कराऊं।
छोड़ो भाई, किंग बेस्ट स्माइल डेंटिस्ट्री को विजिट कर लो। दांत निकालना हो, क्राउन्स, ब्रिजेस, डेंचर्स, इम्प्लांट्स, बच्चों के दांतों का मुकम्मल इलाज, रूट किनाल ट्रीटमेंट और नए पेशेंट्स के लिए फ्री इलेक्ट्रिकल टूथ ब्रश भी है। कंसल्टेशन इज एब्सोल्युटली फॉर फ्री।
पर जाना कहाँ है?
288 किंग स्ट्रीट वेस्ट, हैमिल्टन में 905-521-0540।
अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज नासिर शाह। आपको पता है पिछले 20 सालों से हम मॉर्गेजेस कर रहे हैं, लोन्स कर रहे हैं और कमर्शियल मॉर्गेजेस कर रहे हैं। अगर आपको किसी तरह की मॉर्गेज चाहिए तो गारंटी आपको बेस्ट रेट ऑफर करेंगे और साथ साथ जो टर्म्स एंड कंडीशन है उनका भी बड़ा ध्यान रखते हैं। और कमर्शियल मॉर्गेज कभी भी आपको चाहिए किसी तरह की, होटल मोटल गैस स्टेशन या कोई फ्रेंचाइज लेनी या किसी प्लाजे में कोई यूनिट बाय करना तो उसके लिए भी हमें कॉल करें, और अगर आपको बिजनेस लाइन ऑफ क्रेडिट चाहिए तो उसके लिए भी हमें कॉल करें 647-741-9000 647-741-9000।
कैनेडियन स्पोर्ट्स एंड रिक्रिएशन मार्केटिंग प्रस्तुत करते हैं फंटास्टिक फैमिली फन फेस्ट एक बार फिर आ रहा है आपके शहर ब्रैम्पटन में, और साथ ला रहा है भिन्न भिन्न के चटखारेदार अनेक पकवान, बच्चों के खेल, झूले, मुकाबले, लाइव शोज, ओपन एयर बाजार, क्रिकेट लवर्स के लिए क्रिकेट टूर्नामेंट और बहुत कुछ उपलब्ध, बढ़िया एंटरटेनमेंट और एंट्री बिल्कुल मुफ्त। August 26, 27, 28, CAA Center, Brampton. मज़ीद जानकारी और फ्री रजिस्ट्रेशन के लिए विजिट करें www.fantasticfest.com।
जी सावन नाजरी, वेलकम बैक अगेन, एंड 6:34 और 9 सेकंड हमारी घड़ियों में हो चुके हैं, और जैसे अभी आपने सुना कि भाई भंगड़ा किंग सलीम जावेद हमारे शहर में आ गए हैं, कल आपने सुना भी होगा हमारे रेडियो पे हमारे साथ थे पूरे घंटे के लिए, और सिंगिंग लेजेंड हैं ऑफ कोर्स सलीम जावेद, एक्सक्लूसिव लाइव परफॉर्मेंस देने आए यहाँ पर August 27, सैटरडे, तारीख को भूल जाएं, इस सैटरडे को जो है वो CAA सेंटर ब्रैम्पटन स्पोर्ट्स क्लब जो है या पार्क है स्पोर्ट्स पार्क उसके अंदर देंगे 7575 कैनरी रोड ब्रैम्पटन में ये होने जा रहा है, और मजे की बात यह है कि एब्सोल्युटली फ्री, अपनी पूरी फैमिली को लेके जाए वहां पर, देर इज सो मच फन स्टार्टिंग फ्रॉम फ्राइडे सैटरडे संडे, 3 दिन का लॉट ऑफ फन है एंड देर इज नो पेमेंट एज एब्सोल्युटली फ्री है, आप वहां जाके एंजॉय कर सकते हैं। तो हमने कहा जब मौका अच्छा है तो क्यों ना आज पाकिस्तानी पॉप म्यूजिक हिस्ट्री इम्पैक्ट इन रेकॉर्ड्स में जनाब सलीम जावेद साहब को स्पेशल गेस्ट बनाया जाए, मीन्स कि ही इज नॉट गोइंग टू बी विद अस बट वी गोइंग टू प्ले ऑल हिज सॉन्ग्स, आपकी भी यादें दोबारा साहब, ही वॉज अ लेजेंड, ही इज अ लेजेंड एंड ही विल बी अ लेजेंड। ऑफकोर्स इसको इस प्रोग्राम को लेकर आगे बढ़ाने के लिए नन अदर देन जीशान अहमद मेरे साथ हैं। जीशान अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह, कैसे हो?
वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू, बहुत बहुत शुक्रिया मेजबान, आप कैसे हैं? खैरियत से?
अलहमदुल्लाह अलहमदुल्लाह। तो आज क्या हंगामा लेके आए हो?
आज का हंगामा रहेगा, देखें कल हमारे साथ द लेजेंडरी सलीम जावेद मौजूद थे स्टूडियो में, तो कल तो हमने सिर्फ बातें की हैं,
सही,
ठीक है ना, तो आज मौके का फायदा उठाते हुए आज उनके जो पुराने गाने हैं ठीक है उनको, या नए गाने हैं जो अब तक उन्होंने एल्बम रिलीज किए हैं, तो हमने जो थीम रखा है 14 एल्बम्स 14 सॉन्ग्स,
अच्छी
ठीक है ना, तो मुकाबला सख्त है ठीक है ना, टाइम का हमें मुकाबला सख्त है, और आपको पता है कि शो को खत्म करने के बाद हमें नायगरा फॉल भी भागना है,
वो व्हाट अ सरप्राइज,
बहुत काम कर लिया तो थोड़ा ट्रिप तो बनता है। अच्छा भाई, कल भी मैंने इस बात का जिक्र किया था कि उन्होंने 1985 में जो है अपने म्यूजिक कैरियर का आगाज किया, उनकी पहली एल्बम आई थी 1985 में ठीक है ना, तो 1985 से लेकर 2007 तक उन्होंने 14 एल्बम्स रिलीज की,
सही
ठीक है, तो हर एल्बम का जो मशहूर गाना जो मुझे लगा कि बहुत पॉपुलर हुआ था या इतना सुना नहीं गया लोगों में, तो वो हम जो ना उसको प्ले करेंगे ठीक है। माय जो पहला सॉन्ग पे हम चलते हैं, और ये पहला सॉन्ग जो है पाकिस्तानी म्यूजिक इंडस्ट्री का पहला रिमिक्स सॉन्ग था।
अच्छा
अच्छा, तो इसका जो क्रेडिट है वो जनाब द लेजेंडरी जो है सलीम जावेद उनको जाता है ठीक है। ये गाना जो है पाकिस्तानी फिल्म में मैडम नूरजहां ने गाया था, जानम ओ जानम ठीक है ना, तो आइए सलीम जावेद की आवाज में ये गाना सुनते हैं और देखते हैं जानम ओ जानम जो रिलीज हुआ था 1985 में उनकी पहली एल्बम लिसन टू माई वाइफ वॉइस।
जानम ऐ जानम गाए जवानी दम बदम, ऐ गनीमत है खुदी में जो भी गुजरे कम, हाँ जानम ऐ जानम गाए जवानी दम बदम, ऐ गनीमत है खुदी में जो भी गुजरे कम, हाँ जानम सागर को न जाने लब से तृष्णा है न जाने कब से, غم اے غنیمت خودی میں جو بھی گزرے کم جانم اے جانم گائے جوانی دم بدم اے غنیمت خودی میں جو بھی گزرے کم جانم
جی کیسا لگا مجھے بھائی ٹھیک ہے بھڑکتا ہوا جو
بھڑکتا ہوا ان کے سارے سانگ بھڑکتے ہوئے
بھڑکتے ہوئے لیکن دیکھیں مجھے بھائی مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے کہ 95 میں اس طرح کا ریمکس کرنا وہ جو 85 میں جی 1985 میں اس طرح کا ریمکس کرنا بہت بڑی بات ہے اور لیجنڈری سلیم جاوید کہہ سکتے ہیں دا گریٹ کمپوزر آف دا ریکارڈ آفٹر انٹرویو جاتے وقت ہمارے پاس ٹائم کم تھا تو میں نے ان سے پوچھا تھا کہ آپ کے جو انسٹرومینٹس ہوتے تھے کیسٹس کے کور پر وہ انسٹرومینٹ کی اس کی کیا کہانی تھی تو انہوں نے بتایا کہ جو ہے انسٹرومینٹس بہت ضروری ہوتے تھے تاکہ اس سے جو ہے نا لوگ اٹریکٹ ہوتے تھے بھائی یہ فلاں البم چاہیے تو پاکستانی پاپ میوزک میں جو بھی نیا انسٹرومینٹ آیا وہ جو متعارف کرایا وہ سلیم جاوید نے کرایا ٹھیک ہے نا تو طرح طرح کے نئے جو انسٹرومینٹ تھے وہ سلیم جاوید نے پاکستانی پاپ میوزک میں متعارف کرایا اور ان کو بخوبی اچھی طرح سے استعمال کیا. اچھا اب بات کر رہے ہیں ہم 1995 کی 1995 میں ان کا ایک اور البم آیا تھا ود لو. ود لو میں ایک گانا تھا دل کے سادے کاغذ پر اور یہ اوریجنلی گایا تھا پہلی دفعہ سلیم جاوید صاحب نے 1985 میں اور پھر اسی گانے کو انہوں نے دوبارہ ریمیک کیا تھا تم میرے ہو البم 2000 میں ٹھیک ہے نا. تو آئیے اوریجنل جو گانا ہے دل کے سادے کاغذ پر سلیم جاوید کی آواز میں سنتے ہیں اور دیکھتے ہیں.
دل کے سادے کاغذ پر میرا نام لکھتا جا مگر معلوم نہیں پیار سے تو کچھ کہتا جا. دل کے سادے کاغذ پر میرا نام لکھتا جا مگر معلوم نہیں پیار سے تو کچھ کہتا جا. آج در ہم دونوں میں ایک جیسا ہی موسم ہے پھول کھلا ہے جو مجھ میں اس کی شبنم ہے. آج در ہم دونوں میں ایک جیسا ہی موسم ہے پھول کھلا ہے جو مجھ میں اس کی شبنم ہے. میری خوشبو لے کر تو اپنی خوشبو دیتا جا مگر معلوم نہیں پیار تو کچھ کہتا جا. دل کے سادے کاغذ پر میرا نام لکھتا جا مگر معلوم نہیں پیار تو کچھ کہتا جا.
جی میں نے دیکھا پاپ اور فنکی ٹچ
اگین یس
ٹھیک ہے نا
امیزنگ یس.
اب جی جی ہم آگے بڑھیں گے تو ان کی جو جانر ہے وہ چینج ہوتا رہے گا اور ویریشن جو ان کی میوزک کی ہے وہ ہمیں نظر آتی رہے گی. مجھ بھائی آپ کو میاں داد کا چھکا یاد ہے شارجہ والا؟
کس کو یاد نہیں ہو.
اچھا اس ایونٹ کے بعد سلیم جاوید صاحب نے ایک البم نکالی تھی میاں داد دا گریٹ 1986 میں اور یہ جو پورا البم ہے وہ میاں داد کو ڈیڈیکیٹ
کیا جاتا ہے
ٹھیک ہے نا. تو میاں داد پہ جو گانا بنا تھا وہ ہم سن لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں.
اب کرکٹ کی دنیا میں سب سے آگے ہے وقار جو مشکل میں کم آتا ہے وہ بولا ہے یہ کون اور کرکٹ کی دنیا میں سب سے آگے ہے وہ کون جو مشکل میں کم آتا ہے وہ بولا ہے یہ کون. جب گیند کھیلتا ہے وہ بولر کتنا ڈرتا ہے جب شاٹ کھیلتا ہے وہ ہر ایک شور کرتا ہے. Thank you.
जा पाता है ये हंसता रहता है, बिजली जैसे चमके ऐसे रंग लेता है। विकेट पे जा पाता है ये हंसता रहता है, बिजली जैसे चमके ऐसे रंग लेता है। फील्डिंग यू करता है, गेंद निकल ना पाए कैच ऐसे पकड़ता है, गेंद कहीं भी जाए जो लोगों को खुश करता है वो बोलो है ये कौन। जो मुश्किल में काम आता है वो बोलो है ये कौन। अब क्रिकेट की दुनिया में सबसे आगे है वो कौन। जो मुश्किल में काम आता है वो बोलो है ये कौन।
जावेद मियांदाद ने तो बड़े अप्रिशिएट किया होगा इस सॉन्ग को।
बिल्कुल किया होगा। देखो और मजबूत 96 में पाकिस्तानी म्यूजिक और क्रिकेटर का कनेक्शन जो है बहुत गहरा रहा है।
हाँ।
और यही क्रेडिट जो है बहुत सारे सिंगर्स के अलावा सलीम जावेद को भी जाता है। उन्होंने अपने एल्बम्स में जो ना क्रिकेट के गानों को भी शामिल रखा है। तो जो ही आगे बढ़ेगी बात तो मैं बताता रहूंगा। ठीक है। अच्छा और हम हैं अभी 86 में। ठीक है।
सही।
87 में उनकी एक रैम्बो एल्बम आती है, उसमें आप देखेंगे बिल्कुल मुख्तलिफ सलीम जावेद को सीडी कवर पे आप देखेंगे। उसमें एक पहला ही गाना था अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, बहुत मशहूर हुआ था अपने जमाने का, बहुत ही सुपरहिट गाना है। आइए सुनते हैं और देखते हैं।
मौसिस खवातीन व हजरात, मेरी और मेरे ग्रुप की जानिब से आप सब लोगों को अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम।
अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम।
वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम।
वालेकुम सलाम। हाले दिल बतलाए मुझको आपका मैं दीवाना हूँ, आपकी खिदमत में गीतों का लाया फिर नजराना हूँ, लाया फिर नजराना हूँ। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम।
वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आज मेरे सामने कुछ अनजाने से लोग, मैं फिर भी इनको अपना जानू जैसे भी हैं लोग। आज मेरे सामने कुछ अनजाने से लोग, मैं फिर भी इनको अपना जानू जैसे भी हैं लोग। कुछ मेरे गीतों को अपना प्यार बना लेते हैं लोग, कुछ मेरे गीतों से यूं ही जल जाते हैं लोग, जल जाते हैं लोग। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम।
वालेकुम सलाम। अस्सलाम
वालेकुम। वालेकुम सलाम।
वालेकुम सलाम।
कैनेडियन स्पोर्ट्स एंड रिक्रिएशन मार्केटिंग प्रस्तुत करते हैं फंटास्टिक फैमिली फन फेस्ट, एक बार फिर आ रहा है आपके शहर ब्रैम्पटन में और साथ ला रहा है भिन्न भिन्न के चटखारेदार अनेक पकवान, बच्चों के खेल, झूले, मुकाबले, लाइव शोज, ओपन एयर बाजार, क्रिकेट लवर्स के लिए क्रिकेट टूर्नामेंट और बहुत कुछ उपलब्ध। बढ़िया एंटरटेनमेंट और एंट्री बिल्कुल मुफ्त। अगस्त 26, 27, 28 CAA सेंटर ब्रैम्पटन। मजीद जानकारी और फ्री रजिस्ट्रेशन के लिए विजिट करें www.fantasticfest.com।
जी सामने नाज़रीन, वेलकम बैक अगेन एंड आई होप यू आर एंजॉयिंग पाकिस्तानी पॉप म्यूजिक हिस्ट्री इम्पैक्ट एंड रिकॉर्ड्स। एंड आज हम जो स्पेशल प्रोग्राम पेश कर रहे हैं आपके लिए वो सलीम जावेद पे, क्योंकि सलीम जावेद टोरंटो तशरीफ ला चुके हैं और 27 तारीख मीन्स के कमिंग सैटरडे को 7 बजे ये एक एब्सोल्युटली फ्री आप जाके इनसे मिल भी सकते हैं, बात भी कर सकते हैं और इनका जो कॉन्सर्ट है वो सुन सकते हैं। ये होगा साहब कहाँ पर, 7575 कैनेडी रोड साउथ इन ब्रैम्पटन, آپ تمام کو پتا ہے سی اے اے سینٹر برامپٹن اسپورٹس پارک میں شام کو 7 بجے ہونے جا رہا ہے. جی
اچھا مہیش بھائی, بھولی بسری یاد ہے جو ای آواز اور 770 پہ بڑا مقبول پروگرام ہے, لوگ دیکھتے بھی ہیں, تو اگر انہوں نے اگر آخری جو پروگرام دیکھا ہوگا بھولی بسری یاد ہے, لیاقت نواز ملک صاحب اس کو پیش کرتے ہیں, اس میں ہم نے عادل فلم کا ذکر کیا تھا. اور عادل فلم کا ذکر کیوں کر رہا ہوں, کیونکہ عادل فلم میں جو ایک گانا تھا رقص میں ہے سارا جہاں ناہید نیازی کی آواز میں, اسی گانے کو جو ہے سلیم جاوید نے ریمکس کیا تھا 1988 میں ان کے البم نیو لائف میں. تو دیکھ لیتے ہیں کہ جو ماسٹر ہیں, پائنیئر ہیں ریمکس سانگس کرنے تھے سلیم جاوید, انہوں نے یہ گانا جو ہے کیسا گایا.
رقص میں ہے سارا جہاں جھوم میرے دل ذرا,
رقص میں ہے سارا جہاں جھوم میرے دل ذرا,
محفل میرے یار کی ہے جھوم میرے دل ذرا,
محفل میرے یار کی ہے جھوم میرے دل ذرا,
رقص میں ہے سارا جہاں جھوم میرے دل ذرا,
رقص میں ہے سارا جہاں جھوم میرے دل ذرا,
جھوم میرے دل ذرا.
مزہ آ گیا,
مزہ آ گیا.
ٹھیک ہے نا, آپ کو یاد ہوگا میں نے ہم پچھلے 2-3 پروگرام میں نے ذکر کیا تھا کہ پاکستان میں ایسا ٹرینڈ چلا تھا کہ ہر البم میں کوئی نہ کوئی ایک جو ہے خوشی کا گانا ہوتا ہے, غم کا گانا ہوتا ہے, شادی بیاہ کا گانا ہوتا ہے, تو یہ بھی اس کے متعلق ہے. ٹھیک ہے نا,
شادی بیاہ کے موقع پہ ان کے گانے بڑے بجتے تھے,
بہت بجتے تھے, بہت. ڈانڈیا لے لیں, ڈانڈیا کنگ آیا تھا ڈانڈیا کے نام سے, اور گھونگٹ ان کا ایک سانگ آیا تھا جس کی میں بات کر رہا تھا ان کے ریکارڈنگ انٹرویو سے پہلے. اچھا میں نے کل جو ہمارا انٹرویو ہوا تھا تو ان کے البمس میں جو ہے مہدی حسن خان صاحب کے انہوں نے ریمکس کیے ہیں, احمد زوشی صاحب کے, اور جو تیسرا نام آتا وہ کشور کمار کا آتا ہے. کشور کمار کا میں کیوں نام لے رہا ہوں, کیونکہ ان کا ایک البم آیا تھا 1989 میں ڈانس ود می, تو بہت مشہور کلاسیکل گانا ہے میرے سامنے والی کھڑکی میں. ٹھیک ہے نا, تو بہت ہمارے جو انڈینس ہیں سننے والے وہ بھی جو ہے پراؤڈ فیل کریں گے کہ سلیم جاوید نے 89 میں اتنا خوبصورت جو ہے ریمکس کیا تھا, دا گریٹ کشور کمار کو ٹریبیوٹ پیش کیا تھا. تو آئیے سن لیتے ہیں اور دیکھ لیتے ہیں وہ گانا رقص میرے سامنے والی کھڑکی میں, ڈانس ود می, جو 1989 میں ریلیز ہوا تھا البم.
میرے سامنے والی کھڑکی میں ایک چاند سا ٹکڑا رہتا ہے, میرے سامنے والی کھڑکی میں ایک چاند سا ٹکڑا رہتا ہے, افسوس یہ ہے کہ وہ ہم سے رہتا ہے. میرے سامنے والی کھڑکی میں ایک چاند سا ٹکڑا رہتا ہے, جس
صاف ستھرا اور اسموتھ جو انہوں نے ریمکس کیا تھا. اگر آج کل کے ریمکس سے کمپیئر کیا جائے تو آج شور شرابہ زیادہ ہوتا ہے, ساؤنڈ افیکٹس اس میں زیادہ,
اس کے لیرکس سمجھ بھی نہیں آتے,
سمجھ بھی نہیں آتے. جی ہاں, اور یہ جو انہوں نے ریمکس کیا تھا 1989 میں, اس وقت پورے انسٹرومنٹ کے ساتھ کیا تھا, اس میں کوئی کمپیوٹرائز مشینری استعمال نہیں ہوئی تھی,
ٹھیک
ہے. اس وقت میں کمپیوٹر نہیں آیا تھا, نہ ہی کوئی سافٹ ویئر اس طرح کا ایجاد ہوا تھا مارکیٹ میں آیا تھا کہ وہ اس کو یوز کر کے ریمکس کیا جائے, ٹھیک ہے نا. بڑھتے ہیں آگے, 89 کی ہم نے بات کی تو 1990 کی ہم بات کر لیتے ہیں. اس میں ایک البم آیا تھا میوزک پوائزن کے نام سے, دم دما دم ایک گانا آیا تھا, اور آپ سنیں گے کہ اس کے بلوچی بیٹ ہے, اور ایک ہمارے پاکستان کی جو پولیٹیکل پارٹی ہے اس کا ایک ترانہ بھی یہ رہ چکا ہے. تو آئیے سنتے ہیں اور دیکھتے ہیں دم دما دم سلیم جاوید کی آواز میں, جو 1990 میں ریلیز ہوا تھا.
تو مجھے ملا ایسے کوئی پھول کھلا جیسے دل دھڑکا میرا جب سے, تو مجھے ملا جیسے تو ہر دم میرا میں ہر دم تیرا, تو ہر دم میرا میں ہر دم تیرا. دم دم دما دم 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 دما دم 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 دما دم 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 دما دم. دم 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 دم. تو مجھے ملا ایسے کوئی پھول کھلا جیسے دل دھڑکا میرا جب سے, تو مجھے ملا جیسے تو ہر دم میرا میں ہر دم تیرا, تو ہر دم میرا میں ہر دم تیرا. دم 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 دم
You are listening to WTOR 770 AM, Youngstown, Toronto.
ٹرکنگ والے ویرو دھیان نال سنو, ٹرک جدہ دا بھی چلاونے ہو مینوئل جا آٹومیٹک, کوئک ٹرک لیوب چیتے آہی نہ رکھیو, ٹرک دی بڑیا سروس لئی کوئک ٹرک لیوب. لو جی تیجی لوکیشن بھی کھول دیا, ایگزٹ 579 فرام ہائی وے 401 ان ناپنی. آہو جی کوئی اپوائنٹمنٹ نہیں, ڈرائیو تھرو فیسلٹی, ایگزٹ 579 فرام ہائی وے 401 ان ناپنی. کوئک ٹرک لیوب دا ون سٹاپ شاپ, 519-622-0660 یا کوئک ٹرک لیوب ڈاٹ کام. QTL, because we care.
یوکے سوئٹزرلینڈ اتے اٹلی تو بعد خالستان ریفرنڈم دیاں ووٹاں دا اگلا پڑا کینیڈا. کینیڈا وچ خالستان دیاں ووٹاں دا پہلا سینٹر برمپٹن وچ لگے گا. برمپٹن وچ خالستان دیاں ووٹاں 18 سپتمبر دن ایتوار نوں گور روڈ تے ستھت گور میڈوز کمیونٹی سینٹر وچ سویرے 9 بجے تو لے کے شام دے 5 بجے تک پہن گیاں. ہور جانکاری لئی سمپرک کرو 437-423-2669 جہاں 437-423-2669.
کینیڈین سپورٹس اینڈ ریکریشن مارکیٹنگ کی جانب سے پیش خدمت ہے فنٹاسٹک فیملی فن فیسٹیول, ایک بار پھر آ رہا ہے آپ کے شہر برامپٹن میں, اور ساتھ لا رہا ہے طرح طرح کے چٹخارے دار کھانے, بچوں کے کھیل, جھولے, مقابلے, لائیو شوز, اوپن ایئر بازار, شائقین کرکٹ کے لیے عظیم الشان کرکٹ ٹورنامنٹ اور بہت کچھ. زبردست تفریح اور داخلہ بالکل مفت. آن اگست 26, 27 اینڈ 28 ایٹ سی اے سینٹر برامپٹن. ہیمپٹن. مزید معلومات اور فری رجسٹریشن کے لیے وزٹ کریں fantasticfest.com.
The most glorious, the most exciting, the most star-studded evening is returning for its 8th edition. Hum Awards, once again in Canada. On 24th September 2020.